संख्या 111 उस्मान चित्रावली। इस परंपरा की एक अन्य महत्वपूर्ण रचना उसनाम उपनाम मानकृत चित्रावली है। उस्मान ने अपनी कृति में आत्म परिचय देते हुए अपने विषय में कुछ विवरण दिए हैं। वे गाजीपुर नगर के निवासी थे। उन्होंने तत्कालीन गाजीपुर नगर का बड़ा सुंदर सजीव एवं प्रशंसात्मक वर्णन किया है। गंगा यमुना से मिलकर गाजीपुर में गोमती के साथ मिल जाती है। यहीं पर द्वापर में देवताओं ने तप किया था। यह नगर सुख शांति और समृद्धि से परिपूर्ण था। सब लोग सुखी थे। संपूर्ण नगर इंद्रपुरी जैसा था। गाजीपुर उत्तम अस्थाना देवस्थान आदि जग जाना, गंगा मिली जहाँ जमुना आई, बीच मिली गोमती सुहाई, तीर्धारा उत्तम तट चीन्हा, द्वापर तह देवतन तप कीन्हा, तीन इत्यादि। तीन चित्रावली, संपादक श्री जगन मोहन वर्मा, पृष्ठ 11। उनके पिता का नाम शेख हुसैन था, जो गाजीपुर ही में रहते थे, तथा उनके चार भाई और थे। वे पांचों भाई योग्य और न किसी कला में, पृष्ठ संख्या 112, कुशल थे। शेख अजीज विद्वान, शीलवान तथा दानी थे। शेख इनामुल्लाह योगी थे और शेख फैजुल्लाह एक सिद्ध पीर थे। शेख हसन गायन विद्या में पारंगत थे। कवि उस्मान बसै तहीं गाँव, शेख हुसैन तनय जग नाऊँ, पाँचा भाई पाँचो बुधिहिए, एक एक भांति सो पाँचो लिए, शेख अजीज पढ़े लिखी जाना, सागर सील ऊंच कर दाना, मानुल्लह विधि मारग गहा, जोग साधि जो मोन होई रहा, शेख फैजुल्लह पीर अपारा, गने न काहू गहे हथियारा, शेख हसन गायन भल आहा, गुण विद्या कहाँ गुण सराहा। एक, अपनी विद्या बुद्धि के विषय में उन्होंने केवल इतना ही कहना उचित समझा कि अक्षर चार ही पढ़े हम सिखा, क्योंकि आदि होता विधि माथे लिखा। इससे सुस्पष्ट है कि वे कितने निराभिमानी थे। उस्मान बादशाह जहांगीर के समकालीन थे। उन्होंने तत्कालीन बादशाह के रूप में उसकी वीरता ऐश्वर्य तथा दानशीलता की भूरी भूरी प्रशंसा की है। उस्मान ने चित्रावली में जायसी के समान अपने पीर तथा गुरु दोनों का उल्लेख किया है। नरनौल के शाह निज़ाम चिश्ती उनके पीर थे और बाबा हाजी उनके गुरु, जिनसे उन्होंने शिष्यत्व ग्रहण किया। शाह निज़ाम के बारे में कहते हैं, भवसागर म है कढ़हारा, दुखी सुखी सब पार उतारा, गही भुज कीन्हे पार जे, बिनु साहस बिनु दाम, कश्ती सकल जहान के, चस्ती शाह निज़ाम। दो, और बाबा हाजी के संबंध में लिखते हैं, मोहि माया के एक दिन श्रवण लाग गही माथ, गुरुमुख बचन सुनाए के कलि मह कीन सनाथ। तीन, एक चित्रावली, संपादक श्री जगन मोहन वर्मा, पृष्ठ 12। दो, वही पृष्ठ 10। तीन, चित्रावली पृष्ठ 10, पृष्ठ संख्या 113। वे उच्च कोटि के विद्वान और बहुज्ञ थे। श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी के शब्दों में उनकी कविता से ही प्रकट है कि उनकी शिक्षा दीक्षा इस वर्ग के शायद सभी कवियों से ऊंचे दर्जे की थी। एक, उन्हें अनेक विषयों का विस्तृत ज्ञान प्राप्त था। उदाहरणार्थ, राजा चित्रसेन की सभा में जन संगीतज्ञ नाना प्रकार की राग रागिनियों का आलाप करते हैं, तो वहाँ उस्मान ने बहुत से रागों के नाम गिनाए हैं। सातों सुरों का नाम लेते हुए कवि कहता है, खरज ऋषभ गंधार सुहावा, चौथे सुर मध्यम पुनिगावा, पंचम धैवत और निषाधा, सोई गुनी सातो सुर साधा। दो, चित्रावली में भूगोल भी यथेष्ट वर्णित है। जोगी ढूंढन खंड में अनेक स्थानों का वर्णन कवि के भौगोलिक ज्ञान का सूचक है। तीन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने लिखा है कि उस समय अंग्रेजों को भारत में आए कठिनता से एक वर्ष ही व्यतीत हुआ था। इतने थोड़े समय में उस्मान का अंग्रेजों के संबंध में उल्लेख उनकी ज्ञान राशि का सूचक है। वलन दीप देखा अंग्रजा, तहां जाई नहीं कठिन करेजा, ऊंच नीच धन संपत्ति हेरा, मद बराह भींजन जही केरा। पांच, एक श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी, हिंदी प्रेम गाथा काव्य संग्रह 1953, पृष्ठ 110। दो, चित्रावली पृष्ठ 30। तीन, जोगी ढूंढन खंड में काबुल, बदख्शां, खुरासान, इस्तांबुल, रूस, मिस्र, शाम आदि अनेक देशों का उल्लेख किया गया है। 4. डॉक्टर राम कुमार वर्मा, हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, इलाहाबाद 1958, पृष्ठ 322. 5. चित्रावली 160. श्री जगन मोहन वर्मा के विचार में भी ईस्ट इंडिया कंपनी सन 1600 ईस्वी में लंदन में बनी थी और 1612 में सूरत में कंपनी ने अपना गोदाम बनाया था। उसके एक वर्ष बाद सन 1613 ईस्वी का रचा हुआ यह ग्रंथ पृष्ठ संख्या 114 है। उस समय कवि का एक साधारण गाजीपुर ऐसे छोटे नगर में रहकर अंग्रेज के विषय में इतनी जानकारी रखना कोई साधारण बात नहीं है। 1. चित्रावली में आध्यात्मिकता के साथ नीति पर भी प्रकाश डाला गया है। नीति का आधार उस्मान की लोकोक्तियां हैं, जिनसे समस्त ग्रंथ परिपूर्ण हैं। कवि ने आरंभ में अपनी प्रेम कथा के आदर्श स्वरूप पूर्ववर्ती 3 सूफी प्रेमाख्यानों का उल्लेख किया है। मृगावती मुख रूप बसेरा, राजकुंवर भयो प्रेम अहेरा, सिंघल पद्मावती मोरूपा, प्रेम कियो है चितौर भूपा, मधुमालती होई रूप देखावा, प्रेम मनोहर होई तहां आवा। 2. उन्होंने सन 1022 हिजरी, सन 1613 ईस्वी में चित्रावली की रचना की। सन 1022 जब अहे, तब हम वचन चारी एक कहे। 3. श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी ने लिखा है कि कवि ने इस ग्रंथ का रचना काल सन 1022 हिजरी दिया है और तदनुसार ईस्वी सन 1615 की यह रचना मानी जाएगी। 4. यह लेखक की भूल है, क्योंकि सन 1022 हिजरी के अनुसार सन 1613 ही बैठता है, न कि सन 1615 ईस्वी। उस्मान ने प्रेम कथा को अत्यंत ही रोचक ढंग से प्रस्तुत किया है। इस रचना से कवि के काव्य कौशल की अभिव्यक्ति होती है। 1. चित्रावली भूमिका पृष्ठ 17. 2. चित्रावली पृष्ठ 13. 3. वही पृष्ठ 14. 4. श्री गणेश प्रसाद द्विवेदी हिंदी प्रेम गाथा काव्य संग्रह प्रयाग 1953 पृष्ठ 111. निम्न पंक्तियों से स्पष्ट है कि ग्रंथ की रचना का उद्देश्य यश की प्राप्ति है। संसार में अमर रहने की प्रवृत्ति इस रचना के मूल में है। पृष्ठ संख्या 115. आदि हुता विधि माथे लिखा, अक्षर चारी पढ़े हम सिखा, देखत जगत चला सब जाई, एक वचन पै अमर रहाई, वचन ससान सुधा जग नाही, जेहि पाए कभी अमर रहाही, औजो यह अमृति सो पागे, सौ अमर जग भय सभागे, मोहू चाऊ उठा पुनिहिए, होऊ अमर यह अमृति पिए। 1. परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि कवि का लक्ष्य प्रेम तत्व का निरूपण एवं उसका महत्व निर्धारित करना नहीं है। लौकिक प्रेम के वर्णन द्वारा आध्यात्मिक प्रेम की गंभीर व्यंजना ही उस्मान का मुख्य उद्देश्य है और यही इस रचना के मूल में है। प्रायः सभी पात्र पात्री तथा उनका सारा कार्यकलाप हम आध्यात्मिक साधना, तज्जनित विघ्न बाधाएं और अंतिम निर्वाण के रूप में भी पढ़ सकते हैं। सरोवर क्रीड़ा वाले खंड में उन्होंने बड़ी सुंदर रीति से ईश्वर प्राप्ति की ओर संकेत किया है। चित्रावली सरोवर के गहरे जल में अदृश्य हो जाती है और ईश्वर की भांति वह भी खोज का विषय बन जाती है। सरोवर ढूंढी सबै पची रही, चित्रिन खोज न पावा कहीं, निकसी तीर भई बैरागी, धरी ध्यान सब बिनवै लागी, गुप्त तो ही पावही का जानी, परगट मह जो रह ही छपानी, चतुरानन पढ़ी चारो वेदु, रहा खोजी पै पावन भेदु, संकर पुनि हारे कै सेवा, ताही न मिलिज और को देवा, हम अंधी जही आप न सूझा, भेद तुम्हार कहाँ लो बूझा, कौन सो ठाउ जहाँ तुम नाही, हम चशु ज्योति न देह ही काही, पावे खोज तुम्हार सो जही दिखलावहु पंथ, कहा होई जोगी भय अपुनि पढ़े ग्रंथ। 2. 1. चित्रावली पृष्ठ 12. 2. चित्रावली पृष्ठ 47-48. अतः चित्रावली पूर्णतः कल्पना प्रसूत है और उस्मान के उर्वर मस्तिष्क की उपज है। लौकिक कथा के द्वारा कवि ने परोक्ष की ओर संकेत किया है। इसके संबंध में श्री जगन मोहन वर्मा लिखते हैं पृष्ठ संख्या 116। कवि ने इस ग्रंथ में ठौर ठौर पर वेदांत और अद्वैतवाद की झलक दिखलाने में कमी नहीं की है। कथा ऐतिहासिक घटना से नहीं ली गई जान पड़ती, बल्कि कल्पना प्रसूत है। नेपाल के राज सिंहासन पर एक भी पंवार राजा नहीं हुआ है। कथा विचारने से आध्यात्मिक प्रतीत होती है और इसलिए ग्रंथ में सुजान को शिव का अवतार लिखा है। 1. चित्रावली पर पद्मावत का प्रभाव स्पष्ट रूपेण परिलक्षित होता है, यथा मानसरोवर के तट पर जाकर सखियां पद्मावती से कहती हैं, ए रानी मन देखु बिचारी, एही नहर रहना दिनचारी। जो लगी अह पिता कर राजू, खली लेहु जो खेलहु आजू। दो चित्रावली में इसी प्रकार सखियां कहती हैं, सुख सरवर इह पिता घर, लहर तरंग अपार। खेली लेहु जो खेली बे, को न बर्जन हार। तीन पद्मावत में सखियां इस प्रकार के भाव प्रकट करती हैं, पियु पियार सिर ऊपर, पुनि सो करे दहु काह। दहु सुख राखे की दुख, दहु कस जन्म निबाह। चार चित्रावली में भी सखियां इस प्रकार विचारों की अभिव्यक्ति करती हैं, ऐसे पर पुनि जान विधाता, पियु कस चाह जो जन्म संघाता। सब दुख सुख जोपे पियु चाह, नातरु जन्म अकारथ आहा। पाँच डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार चित्रावली को हम पद्मावत की छाया कह सकते हैं। छः पद्मावत में जिन जिन विषयों पर प्रकाश डाला गया है, उन्हीं विषयों पर चित्रावली में भी विस्तार पूर्वक वर्णन है। एक चित्रावली भूमिका पृष्ठ 16। दो पद्मावत पृष्ठ 23। तीन चित्रावली पृष्ठ 46। चार जायसी ग्रंथावली पद्मावत पृष्ठ 23। पाँच चित्रावली पृष्ठ 46। छः डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इलाहाबाद 1958 पृष्ठ 321। पृष्ठ संख्या 117। सूफी कवि उस्मान के पश्चात सिद्ध हस्त आशु कवि नियामत खां जान, जन्मकाल एक विक्रम की 17वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में अथवा उसके कुछ पहले, मृत्युकाल दो 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध का नाम लिया जाता है, जो हांसी वाले शेख मोहम्मद चिश्ती के शिष्य थे और बहुत प्रतिभा संपन्न थे। उनकी प्रायः 70 रचनाएं उपलब्ध हुई हैं, जिनमें से कनकावती, कामलता, मधुकर मालती, रत्नवती और छीता प्रसिद्ध हैं और इनको सूफी प्रेमाख्यान के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। इनमें मसनवी पद्धति के आधार पर कथा आरंभ के पूर्व ईश्वर वंदना, हजरत मोहम्मद एवं चार खलीफों की स्तुति, शाहे वक्त तत्कालीन शासक की प्रशंसा तथा गुरु का गुणगान वर्णित है, परंतु सूफी दर्शन का नितांत अभाव है। फारसी मसनवी के पयंबर पैगंबर तीन ईरान के अग्रगण्य महाकवि फिरदौसी ने फारसी साहित्य के प्रथम संपूर्ण महाकाव्य शाहनामा चार का आरंभ मसनवी शैली के अनुरूप ईश्वर वंदना आदि से किया है, किंतु यह फारसी सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आ सकता, क्योंकि इसमें सूफी विचारों एवं सिद्धांतों का प्रतिपादन नहीं किया गया। मसनवी शैली को केवल अपनाने वाले जान कवि को सूफी विचारधारा के प्रकटीकरण न करने के कारण हम सूफी कवि नहीं मान सकते और उसकी रचनाओं को सूफी काव्य में स्थान नहीं दे सकते। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि जान कवि कदाचित कवि पहले थे और सूफी उसके अनंतर कहे जा सकते थे। इनकी प्रेम गाथाएं सूफी प्रेम गाथाओं के अंतर्गत किसी प्रकार आ सकती हैं, उनमें कुछ साधारण। एक परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह शक 1880 पृष्ठ 155। दो वही पृष्ठ 155। तीन दर शेर सेह तन पयम बरादन, हरचंद की लाल नबी बादी, अभ्यातो कसीदाओ गजलरा, फिरदौसी ओ अनवरी ओ सादी। यद्यपि मोहम्मद अंतिम पैगंबर थे, तथापि मसनवी कसीदा एवं गजल के क्रमशः फिरदौसी अनवरी एवं सादी पैगंबर हैं। चार मौलाना शिबली शाहनामा को ईरान का जामे विस्तृत एनसाइक्लोपीडिया मानते हैं। शेरुल अजम भाग चार लखनऊ सन 1912 ईस्वी पृष्ठ 211 पृष्ठ संख्या 118। लक्षणों के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। ये कर्ता की स्तुति करते हैं, मोहम्मद के गुण गाते हैं और कभी कभी उनके चार साथियों की भी चर्चा कर देते हैं। इसी प्रकार ये शाहे वक्त का नामोल्लेख कर देते हैं और अपने पीर का परिचय भी दे देते हैं, अपने तथा अपनी रचना के विषय में भी कुछ कह देते हैं। इनमें से कोई भी बात नियमित रूप से सर्वत्र नहीं पाई जाती, न इनके किसी कथा रूपक का कहीं कोई स्पष्टीकरण लक्षित होता है अथवा कोई सूफी उपदेश आता है। एक पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने तो दबी जबान से जान के सूफी कवि न होने का संदेह व्यक्त किया है, परंतु डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे ने अधिकार पूर्ण शब्दों में कहा है, जान कवि ने मसनवी की शैली का अनुसरण अवश्य किया है, पर उनकी कथाओं में सामान्य ढंग के प्रेम का ही विकास हुआ है। कुतुबन जायसी मंझन उस्मान शेख नबी आदि की भांति उनमें प्रेम दर्शन की न तो स्थापना की गई और न इस दृष्टि से कथानकों और चरित्रों का विकास ही हुआ, दो। अतएव उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि जान कवि की रचनाओं में वे भाव उपलब्ध नहीं होते जिनके आधार पर हम उन्हें सूफी कवियों की श्रेणी में सम्मिलित कर सकें। शेख नबी ज्ञानदीप। कवि उस्मान के एक और समकालीन रचयिता शेख नबी थे, जो वास्तव में सूफी कवि थे और जिनका प्रेमाख्यान ज्ञानदीप नाम से प्रसिद्ध है। अपने उत्कृष्ट काव्य में आत्म परिचय देते हुए कवि ने जीवन संबंधी कुछ तथ्यों का उद्घाटन किया है, जिनके आधार पर हम उनके जीवन पर बहुत ही हल्का सा आलोक डाल सकते हैं। कवि का नाम शेख नबी था, जैसा उन्होंने स्वयं लिखा है। तहवा शेष नबी कवि कही, शब्द अमर गुण पिंगल यही। 3.1 पंडित परशुराम चतुर्वेदी, सूफी काव्य संग्रह प्रयाग, शक 1880, पृष्ठ 157। 2 डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे, मध्ययुगीन प्रेमाख्यान इलाहाबाद, पृष्ठ 113। 3 ज्ञानदीप, संपादक श्री उदय शंकर शास्त्री, छंद 17, पृष्ठ संख्या 119। ज्ञानदीप में कवि ने प्रसिद्ध मुगल सम्राट जहांगीर, राज्यकाल संवत 1662-1684 की इस प्रकार प्रशंसा की है। साही सलीम छत्रपति छोनी, दल के मार कंवल दल दौनी, चलत दलत पताल को राजा, सहसोफन फनपति भजी लाजा। 1 इससे शेख नबी का स्थिति काल शासक जहांगीर के राज्यकाल में सिद्ध होता है। ज्ञानदीप की ग्रंथ तिथि भी इस बात को बल देती है। शेख नबी ने ज्ञानदीप के रचनाकाल का उल्लेख इस प्रकार किया है। 1000 सन रहे छबीसा, राज सुलही गनहु बरीसा, समंत 1676, उक्ति ग्रंथ कीन अनुसरा, अल देमाऊ दोसपुर थाना, जाऊनपुर सरकार सुजाना, तहवा शेष नबी कवि कहीं, शब्द अमर गुण पिंगल मही। 2 इन अर्धालियों से स्पष्ट है कि इस ग्रंथ का निर्माण सन 1026 हिजरी अर्थात संवत 1676 विक्रम में हुआ। अतः यह प्रमाणित होता है कि शेख नबी जहांगीर बादशाह के समकालीन थे। ऊपरी लिखित पंक्तियों से यह भी प्रकट होता है कि कवि ने जौनपुर के दोस्तपुर थाने में, अब यह सुल्तानपुर थाने में है, अवस्थित अलदेमऊ में अपना काव्य रचा। ऐसा प्रतीत होता है कि वे यहीं के निवासी थे। ज्ञानदीप में कवि ने अपने गुरु का कोई उल्लेख नहीं किया, अतः उनके गुरु के संबंध में कुछ भी ज्ञान प्राप्त नहीं। शेख नबी में नम्रता कूट कूट कर भरी हुई थी, यह उनके काव्य की प्राय प्रत्येक पंक्ति से परिलक्षित होता है। उन्होंने ईश्वर की स्तुति करते समय अपने आप को अजान, अबोध, दीन, हीन आदि कहा है, जो काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं अंधकार के पाश में फंसा हुआ है। कवि ने स्वयं लिखा है कि अनेक अवगुणों के होते हुए भी उसमें एक गुण यह है कि वह परमात्मा का स्मरण करता है। 1 वही छंद 14, 2 वही छंद 17, पृष्ठ संख्या 120। हों अजान मूरष दुष्व्यापी, अधम अधीन हिय जड़ पापी, अविधि कराऊं विधि पर नहीं जाऊं, पातश प्रीति सुरीति न साऊं, तिष्णा लोभ क्रोध जिम कीन है, मोर मोर लाए लौलन है, काल केली करुणा चित बाढ़ी, हसी नसी रसना रस काढ़ी, कूट कपट छल छंद अनेकु, बात विघात विषय विष केतु, मैन सैन मानिनी मन लाए, मुरे न मन अभिमान उठाए, सब ए गुण है मोही, पह एक गुण गंभीर, लैले नाम रावरो पोषण अधम शरीर। 1 अन्य सूफी कवियों की भांति शेख नबी को भी अनेक विषयों की जानकारी प्राप्त थी। उदाहरणार्थ, कवि ने अपने ग्रंथ में कई राग रागिनियों पर मार्मिक प्रकाश डाला है, जिससे उनकी भोग्यता प्रकट होती है। इसमें वैवाहिक संस्कारों, शकुनों आदि के भी विस्तृत वर्णन मिलते हैं। कवि ने अपने ग्रंथ के संबंध में लिखा है कि उसने वीर, श्रृंगार आदि के आश्रय से जोग का वर्णन किया है। वीर श्रृंगार विरह किछु पावा, पूरन पद लय जोग सुनावा, जोग जुगुत वेद अक्षर हिये, रही न गवा बिनु प्रगट किए। 2 ज्ञानदीप में प्रेम कथा का सुंदर वर्णन है। प्रेम मार्ग पर अग्रसर होने में साधक को कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, यह इस ग्रंथ से भलीभांति ज्ञात हो जाता है। इस ग्रंथ में विरह भावना के साथ आध्यात्मिक भावना का पर्याप्त पुट है। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने लिखा है कि इस रचना के अंतर्गत सारी बातें भारतीय परंपरा के ही अनुकूल कही गई जान पड़ती हैं, और इसमें प्रेम भाव नायक की अपेक्षा पहले नायिका में ही जागृत होना तक दर्शाया गया है। परंतु ऐसा करते समय भी कवि ने ज्ञान एवं योग साधना से कहीं बढ़कर प्रेम तत्व का महत्व सिद्ध करके तथा एक सौंदर्य मुग्धा रमणी का, यूसुफ जुलेखा वाली प्रेम कहानियों की स्त्रियों की भांति अपनी अंगुली में चोट पहुंचाने पर भी उससे एक ज्ञानदीप छंद पांच दो ज्ञानदीप छंद पृष्ठ संख्या 121 अब प्रभावित रहना दिखलाकर उसमें शामी अंतर्भावों को भी स्थान दे दिया है। एक कथा सुखांत है, कवि चाहता है कि इसके द्वारा सब किसी के आनंद में वृद्धि हो। शेख मंजन की भांति उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कह दिया है, अवर कहत जिए बनी नहीं आवे। सूरदास नलदमन, कई विद्वान शाहजहां बादशाह राज्यकाल संवत 1685-1715 विक्रम के समकालीन लखनऊ के सूरदास को सूफी कवि मानते हैं और उनके ग्रंथ नलदमन रचनाकाल संवत 1714 विक्रम को सूफी प्रेमाख्यानक काव्य दो कहते हैं। परंतु वस्तुतः सूरदास न तो सूफी कवि थे और न ही उनका ग्रंथ सूफी प्रेमाख्यानक काव्य था। सूरदास के संबंध में प्रोफेसर राम पूजन तिवारी का अधोलिखित कथन इस मत को पुष्ट करता है कि सूरदास सूफी कवि नहीं थे। सूरदास की निम्नलिखित पंक्तियों से यह स्पष्ट हो जाता है कि वे सूफी नहीं थे। इन पंक्तियों में जो विचार प्रकट किए गए हैं वे पूर्ण रूप से हिंदू विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाले हैं। इस प्रकार के विचार सगुण भक्तों की रचनाओं में मिलते हैं। सूरदास कहते हैं, जौने अंग भजय जो बाको तेही अंग मिले वह ताको, जो ताको साहब कह माने ताही वह सेवक कह जाने, जो को कहे कि सखा हमारा ताही सखा हुई मिले प्यारा, जो को ताके जात कहावे जात मात तिन्ह पात मिलावे। तीन इत्यादि। एक हिंदी साहित्य संपादक धीरेन्द्र वर्मा एवं डॉक्टर ब्रजेश्वर वर्मा द्वितीय खंड प्रयाग सन 1959 ईस्वी पृष्ठ 265-266। दो नल दमन संपादक डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आगरा सन 1961 ईस्वी भूमिका पृष्ठ 10। तीन वही पृष्ठ 13। चार प्रोफेसर राम पूजन तिवारी हिंदी सूफी काव्य की भूमिका पटना सन 1960 ईस्वी पृष्ठ 160 पृष्ठ संख्या 122। कवि कासिम शाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह रिपीट पृष्ठ संख्या 122। नल दमन के विषय में डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे का मत उल्लेख्य है। फैजी ने अपने संपूर्ण कथा सूफियाने रंग में लिखी है, पर सूरदास ने अपने नल दमन को पूर्णतः सूफी ढांचे में नहीं ढाला है। वह एक हिंदू कवि है, अतः उसके काव्य में हिंदू परंपराओं की भरपूर रक्षा हुई है। दमयंती की मृत्यु के पश्चात नल सन्यासी हो जाता है, यह भी सूफी दृष्टिकोण नहीं है। एक अतः स्पष्ट है कि नल दमन सूफी काव्य परंपरा के अंतर्गत नहीं आ सकता। कासिम शाह हंस जवाहिर, सूफी कवि कासिम शाह द्वारा प्रणीत हंस जवाहिर भी इस परंपरा का प्रसिद्ध काव्य है। हंस जवाहिर में कवि के जीवन चरित्र संबंधी कुछ तथ्य अंतर साक्ष्य के रूप में उपलब्ध हैं। कवि का नाम कासिम तथा उसके पिता का नाम इमानुल्लाह था, वे नीच जाति के थे। दो और अवध प्रांत के अंतर्गत लखनऊ जिले के दरियाबाद नामक नगर के निवासी थे, जैसा कि निम्न अर्धालियों से स्पष्ट है। दरियाबाद मांझ ममठाऊ इमानुल्लाह पिता करनाऊ, तहबा मोहि जन्म विधि दीन्हा कासिम नाव जात काहीना। तीन तथा है लखनऊ अवध मंजियारा दरियाबाद नगर उजियारा। चार एक डॉक्टर श्याम मनोहर पांडे मध्ययुगीन प्रेमाख्यान इलाहाबाद प्रथम संस्करण पृष्ठ 194-95। दो पता लगाने से ज्ञात हुआ कि ये चिड़ीमार थे और शाही पक्षियों की देखरेख का काम इनके अधिकार में था। ब्रजकिशोर मिश्र अवध के प्रमुख कवि लखनऊ संवत 2017 विक्रम पृष्ठ 98। तीन हंस जवाहिर नवल किशोर प्रेस लखनऊ सन 1937 ईस्वी पृष्ठ 7। चार वही पृष्ठ 7 पृष्ठ संख्या 123। कवि कासिम शाह दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह राज्यकाल संवत 1776-1805 विक्रम के समकालीन थे। इस शासक की प्रशंसा कवि ने उदात्त शब्दों में इस प्रकार की है, मोहम्मद शाह देहली सुल्तानु कामी गुण वह कीन बखानु, छाजय पाट चीर सरताजा नावही शीश जगत के राजा, रूपवंत दर्शन मोहराता भागवंत वह कौन विधाता, द्रव्यवंत धर्म महपूरा ज्ञानवंत खरग महसूरा, होय बलवंत कटक कही चोरा देशवंत चितवय चहु ओरा, नावे शीश हिंदु तुरकना कापे देश देश के थाना, देश देश तह के अमरऊ कीन अचल होय करे नियाऊ, बैठा आप सुपाट पर राज करे सुख भोग, सुखी भई सब पृथ्वी राय रंक जन लोग। एक मिश्र बंधु ने हंस जवाहिर का रचना काल लगभग संवत 1900 बताया है। दो परंतु यह ठीक नहीं, कवि ने स्वयं लिखा है कि उसने अपने ग्रंथ की रचना सन 1149 हिजरी, सन 1736 ईस्वी अथवा संवत 1793 विक्रम में की। 11 से 49 जो भ्राजा, तब यह प्रेम कथा कवि साजा। तीन पंडित रामचंद्र शुक्ल एवं डॉक्टर राम कुमार वर्मा के अनुसार कवि कासिम शाह का काल संवत 1788 विक्रम माना गया है। चार पर पंडित परशुराम चतुर्वेदी का अनुमान है कि वे विक्रम की 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध से लेकर 19वीं शती के पूर्वार्ध तक रहे होंगे। पाँच एक हंस जवाहिर पृष्ठ 6। दो मिश्र बंधु विनोद लखनऊ संवत 1985 विक्रम भाग 3 पृष्ठ 1035। तीन हंस जवाहिर पृष्ठ 8। चार क पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास काशी संवत 2003 विक्रम पृष्ठ 110। ख डॉक्टर राम कुमार वर्मा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास प्रयाग सन 1958 ईस्वी पृष्ठ 325। पाँच पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह शक 1880 पृष्ठ 176 पृष्ठ संख्या 124। शासनकाल समकालीन बादशाह के शासनकाल एवं ग्रंथ के रचना काल को ध्यान में रखकर हम कह सकते हैं कि कवि का जन्म विक्रम की 18वीं और देहांत 19वीं शताब्दी में हुआ। पीरों की चर्चा करते हुए कवि ने पीर करीम, मोहम्मद अशरफ एवं उनके पुत्र पीर अता का गुणगान किया है। निम्न पंक्तियों से अज्ञात होता है कि पीर अशरफ ही उनके दीक्षा गुरु थे। है आधार सुमिरन मेरे मोहम्मद अशरफ नाव, यही मगर रास्ता नहीं चलत जहिमा है नहीं नाव। एक उन्हीं की कृपा अनुकंपा चमत्कार शक्ति का उल्लेख कवि ने श्रद्धा भाव से किया है। सूफी पद्धति के अनुरूप यह कथा भी अध्यात्म परक है। इसमें सूफी सिद्धांतों का सम्यक विवेचन हुआ है। कवि पर जायसी का बड़ा गहन प्रभाव प्रतीत होता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि उन्होंने जगह जगह जायसी की पदावली तक ली है। दो कथा के अंत में कासिम शाह जायसी का अनुसरण करते हुए कथा रूपक की ओर इंगित करते हैं। कासिम कथा जो प्रेम बखानी, बूझे सो जो प्रेमी ज्ञानी, कौन जवाहिर रूप सोहाई, कौन शब्द जो करत बढ़ाई, कौन हंस जो दर्शन लोभा, कौन देश जेहि ऊंचे शोभा, कौन पंथ जो कठिन अपारा, कौन शब्द जो उतरे पारा, कौन मीत जिन संग जब दीन्हा, कौन सो दुर्जन अति छलकीना, को ज्ञानी को बरनी सुनावा, कौन पुरुष जो सनुचित लावा, कौन दुष्ट जेहि दर्शन जूझा, कौन भेद जेहि शब्द ही बूझा, बाँच कथा पोथी भुवन परसन तेहि जगदीश, हम ही बोला सुमिरै सोई कासिम दई अशीष। तीन एक हंस जवाहिर पृष्ठ 5। दो पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास काशी संवत 2003 विक्रम पृष्ठ 111। तीन हंस जवाहिर पृष्ठ 272 पृष्ठ संख्या 125। हंस जवाहिर की कथा सार कवि ने जायसी की भांति इस प्रकार दिया है। कथा जो एक गुपुत मह रहा, सो परगट उधारी मैं कहा, हंस जवाहिर विधि अवतारा, निर्मल रूप सुदई संवारा, बलख नगर बुरहान सुल्तानु, तेहि घर हंस भये जस भानु, आलम शाह चीन पति भारी, तेहि घर जन्मी जवाहिर बारी, तेहि कारण वह भयो वियोगी, गयो स छाड़ी देश होई जोगी, अंत जवाहिर हंस घर आनी, सो जग मह यह गयो बखानी, सो सुनी ज्ञान कथा मैं कीन्हा, लिखे सो प्रेम रहे जग चीन्हा। एक यह कथानक पूर्णतः काल्पनिक है। इसका अंत दुखमय दिखाया गया है। लगता है कि कवि ने संसार एवं जीवन की नश्वरता प्रदर्शित करने के लिए ऐसा किया है। हंस जवाहिर पद्मावत की भांति प्रख्यात रचना है। इन दोनों ग्रंथों की प्रसिद्धि लगभग समान रूप से रही है। कवि शेख रहीम अपनी शिक्षा दीक्षा का परिचय देते हुए लिखते हैं, पद्मावत देखो निरथाई, मलिक मोहम्मद केर बनाई। दो हंस जवाहिर कासिम केरी, पढ़ो सुनियो पुस्तक बहुतेरी, जो कुछ भी हो यह पद्मावत सी प्रौढ़ रचना नहीं है। नूर मोहम्मद कासिम शाह के पश्चात नूर मोहम्मद का उल्लेख किया जाता है, जिनके तीन ग्रंथ इंद्रावती, अनुराग बांसुरी और नल दमन कहे जाते हैं। इंद्रावती पहला भाग और अनुराग बांसुरी प्रकाशित होकर प्रसिद्ध हो चुके हैं, परंतु तृतीय ग्रंथ का केवल नाम ही नाम रह गया है, उसकी कोई प्रति अब तक उपलब्ध नहीं हुई। एक, पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, काशी, संवत 2003, विक्रम, पृष्ठ 111। दो, शेख रहीम भाषा प्रेम रस, पृष्ठ संख्या 126। कवि के जन्म स्थान, जन्म समय, मृत्यु समय आदि का पता नहीं है, परंतु उनका निवास स्थान पूरब में सबरहत था, यह अंतः साक्ष्य से विदित होता है। कवि स्थान कीन जहि ठाउ, सो वह ठाउ सबरहद नाउ, पूरब दिस कैलाश समाना, अहे नसीरुद्दी को थाना। एक, पूर्व दिशा में कैलाश के समान सौरम्य, सुंदर एवं सुखप्रद सबरहद स्थान कहाँ है, इसकी जानकारी गजेटियर आदि से भी नहीं होती। यह कोई साधारण सा गांव अथवा कस्बा होगा जो अभी तक प्रसिद्धि प्राप्त नहीं कर सका। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने लिखा है कि सबरहद जौनपुर जिले में जौनपुर आजमगढ़ की सीमा पर है। दो, श्री चंद्रबली पांडे ने अधिक सूचना देते हुए कहा है कि सबरहद जौनपुर जिले में शाहगंज तहसील के अंतर्गत है। तीन, यह गांव सबरहद तो आज भी वर्तमान है, परंतु इसके पूर्व की ओर किसी नसीरुद्दीन के थाना की कोई सूचना नहीं मिलती। श्री रामचंद्र शुक्ल ने यह भी लिखा है कि पीछे सबरहद से ही अपने ससुराल भादो जिला आजमगढ़ चले गए। इनके ससुर शमसुद्दीन का और कोई वारिस न था, इससे ये ससुराल ही में रहने लगे। नूर मोहम्मद के दो पुत्र हुए, गुलाम हुसैन और नसीरुद्दीन। नसीरुद्दीन की वंश परंपरा में शेख फिदा हुसैन अभी वर्तमान हैं, जो सबरहद और कभी कभी भादो में भी रहा करते हैं। अवस्था इनकी 70 वर्ष की है। चार, अनुमानतः शुक्ल जी ने उक्त सूचना अपने समकालीन शेख फिदा हुसैन से प्राप्त की होगी। एक, इंद्रावती संपादक श्याम सुंदर दास पहला भाग पृष्ठ 2। दो, पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, संवत 2003, पृष्ठ 111। तीन, अनुराग बांसुरी हिंदी साहित्य सम्मेलन बीती बात पृष्ठ 6। चार, पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास, संवत 2003, पृष्ठ 111। श्री चंद्रबली पांडे ने कवि पर कुछ और प्रकाश इस प्रकार डाला है। फारसी में कामयाब नाम से कविता करते थे और लगभग सन 1780 पृष्ठ संख्या 127 ईस्वी तक विराजमान थे। एक, इस सन का आधार पांडे जी ने अपने स्मृति के अनुसार फारसी दीवान में उल्लिखित सन 1193 हिजरी, सन 1779 ईस्वी को स्वीकार किया है। दो, कवि ने कामयाब उपनाम का प्रयोग अनुराग बांसुरी में भी किया है, जैसे कामयाब कह क जगावा, फिर हिंदी भाख है पर आवा। तीन, इनका समय दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह का समय था और कवि ने तत्कालीन शासक के रूप में इंद्रावती में उसकी चर्चा की है, परंतु अनुराग बांसुरी में शाह वक्त का वर्णन नहीं किया। कवि ने प्रथनानुसार समसामयिक शासक मोहम्मद शाह की प्रशंसा इस प्रकार की है। कहो मोहम्मद शाह बखानू, है सूरज दिल्ली सुल्तानू, सब काहू पर दाया धरई, धर्म सहित सुल्तानी करई। चार, इंद्रावती एवं अनुराग बांसुरी दोनों ही पुस्तकों से प्रमाणित होता है कि नूर मोहम्मद शिया थे। इमाम हुसैन सुपुत्र हजरत अली 45 वर्ष की अवस्था में 33 नेजों के और 34 तलवारों के घाव खाकर 10 मुहर्रम सन 61 हिजरी को अपने 72 प्यासे साथियों, 32 सवार और 40 प्यादों के साथ इब्द सअद की सेना से करबला के युद्ध में पराजित हुए। पाँच, कवि ने प्यासे इमाम हुसैन का वर्णन बड़े मार्मिक ढंग से किया है, जो अनेक यातनाएं सहने के उपरांत वीर गति को प्राप्त हुए थे। बावेला प्यासा गा मारा, आल रसूल वतूल पियारा, उठा चहूं दिस्ते बावेला, मही सिर परेउ सोग को सैला, पर ही रेउ गगन मातमी भागा, परेउ चंद के हियरे दागा, और शशि कहूं दुख राहु गराहा, सूरज कहाँ उपने उरदाहा, इनके बीच हसन का प्यारा, सेहरा लीन रकत के धारा। एक, अनुराग बांसुरी बीती बात पृष्ठ 6-7। दो, वही बीती बात पृष्ठ 7। तीन, अनुराग बांसुरी पृष्ठ 85। चार, इंद्रावती पृष्ठ 2। पाँच, अल्लामह मुहियुद्दीन मिस्त्री तारीख इस्लाम उर्दू अनुवाद लखनऊ भाग 3 पृष्ठ 20-21। पृष्ठ संख्या 128। नूर मोहम्मद जीभते कहे न मातम होई, जियसो कहूँ मातम कथा, मन आखिन सो रोई। एक, शिया हजरत अली को हजरत मोहम्मद का उत्तराधिकारी समझते हैं, अतएव अनुराग बांसुरी में हजरत अबू बकर, हजरत उमर एवं हजरत उस्मान की चर्चा नहीं, अपितु शिया मतानुयायियों की भांति रसूल, हजरत अली, बीवी फातिमा, इमाम हसन और हुसैन की प्रशंसा की गई है। शिया संप्रदाय में इन्हीं पांचों की प्रतिष्ठा है। नूर मोहम्मद कट्टर शिया के रूप में इस प्रकार लिखते हैं, जहां रसूल अल्लाह प्यारा मत को मुक्तावन हारा, तहां दूसरों कैसे भावे, जच्छ असुर सुर काज न आवे, जहां हसनैन बतूल सनेहा, तहां समाई न दूसरी देहा, जहां अली हैदर है असदुल्लाह, तहां कहां को राक्षस पावे राह। दो, नूर मोहम्मद पक्के मुसलमान थे, फिर भी उन्हें अपने भीतर सदैव इस बात का भय बना रहा कि हिंदी भाषा को माध्यम बनाने से कोई उन्हें अधार्मिक ना समझ ले। अतएव अपनी सफाई देते हुए कहते हैं, जानत है वह सृजनहारा, जो किचु है मन मरम हमारा, दिन दु मग पर पाँव न राखेऊ, काजों बहुते हिंदी भाखेऊ, मन इस्लाम मसल के मांजेऊ, दीन जेवरी करकस भांजेऊ। दो, अपनी नीति स्पष्ट करते हुए वे बताते हैं कि उनके हृदय के रहस्य प्रभु जानता है। वे ऐसा कर हिंदुओं के मार्ग पर अग्रसर नहीं हो रहे हैं, जैसे रस्सी को खूब दृढ़ और प्रौढ़ बनाने के लिए लोग उसकी कई कलियों को एक में खूब कसकर भांज देते हैं, वैसे ही हिंदी के द्वारा इस्लाम को उन्होंने भांज कर प्रौढ़ बना दिया है। उन्होंने हिंदी भाषा को केवल अपने धार्मिक विचारों की अभिव्यक्ति के लिए ही अपनाया है। एक, इंद्रावती पृष्ठ 3। दो, अनुराग बांसुरी पृष्ठ 90। 3, वही पृष्ठ 89। पृष्ठ संख्या 129। नूर मोहम्मद ने अपने कृतियों में अपनी गुरु परंपरा का उल्लेख नहीं किया। इनकी इंद्रावती में केवल शेख नसीरुद्दीन का नाम आता है, कहा नहीं जा सकता कि ये नसीरुद्दीन कौन थे। कवि नूर मोहम्मद बहुश्रुत एवं बहुज्ञ थे। पंडित परशुराम चतुर्वेदी ने उनकी बहुज्ञता के संबंध में लिखा है कि वे कुशल कवि और योग्य पंडित जान पड़ते हैं, इन्हें पंडिताओं ज्ञान जायसी से कम नहीं। एक, डॉक्टर सरला शुक्ल के शब्दों में सूफी मुसलमान फकीर तथा दरवेशों के अतिरिक्त अन्य और कई संप्रदायों, गोरखपंथियों, वेदांतियों आदि से भी इनका संबंध रहा ज्ञात होता है। दो, उन्होंने हठ योग की इला आदि नारियों के अतिरिक्त दशम द्वार का भी उल्लेख किया है। अपनी बहुज्ञता का प्रदर्शन करते हुए कवि ने विभिन्न राशियों में सूर्य ग्रहण तथा चंद्र ग्रहण के लगने के फल पर विस्तार पूर्वक विचार किया है, यथा रवि को गहन मिथुन मोह प्यारी, उद्दम घटी होई अधिकारी, निर्बल लेखक और बनी जारे, हो ही और जो लिखन हारे, शशि को गहन मिथुन मा, पीछू और दुख होई, श्रोणित बह चहो दिस, दास न पावे कोई। 3, आदि। ऐसे वर्णनों से कवि के ज्ञान का तो प्रदर्शन होता है, किंतु इनसे कथा प्रवाह में बाधा अवश्य ही पहुंचती है। इसी प्रकार औषध वर्णन खंड में नाना प्रकार के रोगी की औषधियों का वर्णन करके उनके वैद्य ज्ञान का सूचक है। निस्संदेह कथा या काव्य के वैशिष्ट्य को ध्यान में रखकर ऐसे वर्णनों का समावेश नहीं किया गया है, केवल बहुज्ञता का प्रदर्शन ही अभीष्ट है। इंद्रावती कवि की अधोलिखित पंक्तियां बड़ी महत्वपूर्ण हैं। है कवि समय नई तरुणाई, छूट न अबही कवि लरिकाई, बिनवत कविजन कहकर जोरी, है थोरी बुद्धि पूंजी अमोरी। 1, पंडित परशुराम चतुर्वेदी सूफी काव्य संग्रह शक 1880 पृष्ठ 183। 2, डॉक्टर सरला शुक्ल जायसी के परवर्ती हिंदी सूफी कवि और काव्य संबत 2013 विक्रम पृष्ठ 453। 3, इंद्रावती पृष्ठ 130। पृष्ठ संख्या 130। हाँ मैं लरिकाई को चेला, कहो न पोथी खेल हूँ खेला, सन 1100 रहेऊ 57 उपराह, कहे लगो पोथी तबे, पाए तपी कर बाह। 1, इन पंक्तियों से एक तो यह पता चलता है कि नूर मोहम्मद बहुत विनयशील थे, दूसरे यह ज्ञात होता है कि इंद्रावती की रचना सन 1157 हिजरी, सन 1744 ईस्वी अथवा संवत 1801 विक्रम में हुई। तीसरे यह विदित होता है कि इंद्रावती की रचना के समय वे केवल नवयुवक मात्र थे और वह उनकी प्रारंभिक रचना थी। कवि का उद्देश्य इस प्रेमाख्यान द्वारा परम प्रियतम के प्रति अपना प्रेम तथा भक्ति निवेदन करना है। नूर मोहम्मद का कथन है कि परमात्मा ही सब कुछ है, प्रत्येक मानव उस परम सौंदर्यशाली पर ब्रह्म का दर्पण बनना चाहता है। सब मानुष मन प्रीत घनेरी, उपजी इंद्रावती मुख केरी, भुकुर बने चाहा सब कोई, जामो आई परों मुख सोई। 2, इंद्रावती के लौकिक सौंदर्य से उस परम सौंदर्य की झलक मिलती है। कवि ने बतलाया है कि प्रेम ही इस सृष्टि के मूल में है, यह जिसके हृदय में वास करता है वह अजर एवं अमर हो जाता है, वस्तुतः वह तो दोनों संसारों का स्वामी बन जाता है। अलस प्रेम कारण जग कीन्हा, धंजो शीस प्रेम मह दीन्हा, जाना जेहिक प्रेम मह हिया, मरे न कबहू सो मर जिया, प्रेम खेत है यह दुनियाई, प्रेमी पुरुष करत बोआई, जीवन जाग प्रेम को अहई, सोवन मीच वो प्रेमी कहई, आग तपन जल चाल समुझो, पुनि टिकान माटी कह बूझो, हाँ प्रेमी है प्रेम को चंचलताई बाए, जामन जामा प्रेम रस भा दो जग को राय। 3-1 इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 4, 2 वही पृष्ठ 18, 3 इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 6, पृष्ठ संख्या 131। जिसके हृदय में प्रेम उत्पन्न हो जाता है वह दुख में भी सुख का अनुभव करता है, प्रेम पीर का कोई उपचार नहीं। जाके देह प्रेम दुख होई, औषध करे न पारे काई, सुखी प्रेम के दुख का दुखी, प्रगट दुखी गुप्त है सुखी। 1 तथा मिटे नहीं औषध सो, प्रेम पीर जेही होई। 2 इंद्रावती में पद्मावत की भांति लौकिक प्रेम वर्णन के मध्य अलौकिक संकेत स्थान स्थान पर दृष्टिगोचर होते हैं। उपदेश देने के लिए अथवा दुखी और विरही मन को शांति पहुंचाने के लिए छोटी छोटी कहानियों का समावेश भी किया गया है। जीव कहानी इसी प्रकार की एक कहानी है। यह कहानी पूर्ण रूप से रूपक है। सुनहु मित्र अब जीव कहानी, जो लिखी गई सहचरी ज्ञानी। जीव एक राजा का नाऊ, सो शरीर पुर पाए उठाऊ, रह वह जीव के एक नरेशु, सो दीन्हा जीव को वह देशु। 3 इत्यादि। इंद्रावती का कथानक पूर्ण रूपेण काल्पनिक है। अनुराग बांसुरी हिंदी का प्रथम सफल रूपक और प्रेम काव्य जगत का अनूठा ग्रंथ रत्न अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद की काव्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है। इसके रचना काल के संबंध में कवि ने स्वयं ही लिखा है, यह 1178 फिर सुनायो बचन मनोहर। 4 इसके अनुसार यह ग्रंथ सन 1178 हिजरी, सन 1764 ईस्वी या संवत 1821 विक्रम में रचा गया। 1 वही पृष्ठ 154, 2 वही पृष्ठ 154, 3 इंद्रावती पहला भाग पृष्ठ 64, 4 अनुराग बांसुरी पृष्ठ 86। अनुराग बांसुरी को अलेगरी, अन्योक्ति अथवा रूपक कहा पृष्ठ संख्या 132 जाता है। इसमें अंतःकरण, बुद्धि, चित्त, अहंकार, संकल्प, विकल्प, मोहिनी, सर्वमंगला आदि पात्र प्रेम कथा के माध्यम से इंद्रिय विरोध के द्वारा आध्यात्मिक साधना का संदेश देते हैं। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास में कहा है कि कवि ने इसकी रचना अधिक पांडित्यपूर्ण रखने का प्रयत्न किया है और विषय भी इसका तत्व ज्ञान संबंधी है। शरीर, जीवात्मा और मनोवृत्तियों आदि को लेकर पूरा अध्यवसित रूपक अलेगरी खड़ा करके कहानी बांधी है। 1 श्री चंद्र बलि पांडे की दृष्टि में इसे उपमिति कथा कहना ही ठीक और समीचीन होगा। 2 वे अपने उक्त कथन के पक्ष में लिखते हैं, उपमिति नाम यद्यपि नवीन सा प्रतीत होता है तथापि इसका प्रयोग प्राचीन है। संस्कृत के कथा साहित्य में उपमिति भाव प्रपंच कथा का नाम अति प्रसिद्ध है। हम इसी उपमिति को इस ढंग की रचना का साधु संकेत समझते हैं और इसी के भीतर अन्योक्ति एवं रूपक का समावेश भी पा जाते हैं। रूपक और अन्योक्ति के मूल में उपमा है ही, फिर उसी के आधार पर इसे उपमिति कहने में क्या क्षति है। 3 इंद्रावती की कथा पद्मावत के कथानक की भांति मानव जीवन के सभी अंगों को समेट कर धर्म के साथ आगे बढ़ती है, परंतु अनुराग बांसुरी की कथा धर्म के बल पर चलती है। इंद्रावती में पद्मावत के समान लोक व्यवहार को ब्यौरे के साथ वर्णित किया गया है, अनुराग बांसुरी में धर्म भावना को मुख्यता दी गई है। श्री चंद्रबलि पांडे के शब्दों में कवि की दृष्टि यहाँ लोक पर नहीं इस्लाम पर ही है। अनुराग बांसुरी धर्म कथा है, कुछ और कथा नहीं। 4 हम पांडे जी के इस कथन से सहमत नहीं कि अनुराग बांसुरी सर्वथा लोक पक्ष शून्य है। 1 पंडित रामचंद्र शुक्ल हिंदी साहित्य का इतिहास संवत 2003 विक्रम पृष्ठ 113। 2 अनुराग बांसुरी प्रस्तावना पृष्ठ 70। 3 वही पृष्ठ 70। 4 अनुराग बांसुरी प्रस्तावना पृष्ठ 24-25। इसमें संदेह नहीं कि कवि का ध्यान पृष्ठ संख्या 133 लोक तत्व की ओर अधिक नहीं है, फिर भी गुरु धर्म, सुसंगति, भाग्यवादिता, माता पिता की सेवा आदि कई विषयों पर कवि ने अपने भाव अभिव्यक्त किए हैं। यथा कहा स्नेह गुरु बैरागी, तीरथ कारण भा अनुरागी, गुरु को धर्म दान व्रत धरना, चरण धर्म तीरथ को करना। 1 तथा जेहि मग पुरुष लोग चलिहारे, तेहि मग बामन गवने पारे, प्रीतम पथ को धूरी कपूरु, जीव दृग अंजन है वह धूरु, ओही रज आदर नित है रामा, चाहे शीश चरण का ठामा, दारा लाजवंती जो होई, रहे सलज मंदिर मोसोई, दो इत्यादि। हमारे विचार में प्रेम से पुष्ट प्रतिबिंबवाद आदि से प्रभावित पांडित्य से परिपूर्ण अनुराग बांसुरी एक प्रौढ़ पुस्तक है जिसके पद पद से परिपक्वता परिलक्षित होती है। इसमें रीति प्रवृत्तियों का भी प्रभाव दृष्टिगोचर होता है। विरह की 10 दशाओं में नायिका भेद के कुछ अंगों का निरूपण नामोल्लेख पूर्वक किया गया है, जैसे रूप गर्व राख है धनजोई, जानहु रूप गर्विता सोई, 3। यहाँ पर यह लिखना समीचीन प्रतीत होता है कि भारत के उदार सूफी कवियों ने जिस कमनीय कथा साहित्य का निर्माण किया था उसमें परिवर्तन अनुराग बांसुरी के साथ हो गया। कवि नूर मोहम्मद के बाद भारतीय लोक कथाओं के स्थान पर शामी कथानकों को अधिक महत्व दिया जाने लगा। इस संबंध में प्रोफेसर राम पूजन तिवारी का मत उल्लेख्य है। नूर मोहम्मद की रचनाओं में जिस रास के दर्शन होते हैं तथा कवि के दृष्टिकोण में जैसा परिवर्तन दिखता है, बाद के कवियों में वह अत्यंत ही 1. अनुराग बांसुरी पृष्ठ 154, 2. अनुराग बांसुरी पृष्ठ 125, 3. डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास चंडीगढ़ सन 1965 पृष्ठ 564 पृष्ठ संख्या 134 स्पष्ट हो गया है। नूर मोहम्मद की रचनाओं में ही मजहबी ढंग रंग चढ़ा हुआ दिखता है, बाद की रचनाओं में तो वही प्रधान हो उठा है। कवियों ने फिर भारतीय लोक कथाओं को भी अपनाने की जरूरत नहीं समझी। अरब या फारस की कहानियां अथवा कुरान आदि में वर्णित कथाओं का ही इन परवर्ती कवियों ने अपने काव्य का विषय बनाया। जहाँ लोक प्रचलित भारतीय कहानियों को आधार बनाया भी गया है, वहाँ कवि के परिवर्तित दृष्टिकोण का पता सहज ही चल जाता है। प्रोफेसर राम पूजन तिवारी, हिंदी सूफी काव्य की भूमिका, पटना सन 1960 पृष्ठ 272।